Hello everyone, my name is Vikas Agrawal and I'm the founder of AIF and PMS Experts India. So AIF is nothing but alternate investment funds and PMS is your portfolio management services. So as you know that at the regulatory level, there are three instruments which are regulated by SEBI. One is mutual fund, and mutual fund that has been into existence for over now almost 27, 28 years. And then you also have alternate investments funds, which are like got regulated in the year of 2012, and also portfolio management services. And most of the people would be surprised to notice that portfolio management services has more history than mutual funds, because that got regulated in 1993, whereas PMS mutual funds got regulated in 1996. So it has been into existence for quite some time. Of course, it has evolved over a period of time. Initially, there were a lot of issues in terms of, there were few players who had their own conflict of interest and, could manage to scale up. And then the organized players started focusing on that. And as a result of that, now what we are witnessing is there's a huge value migration happening from mutual fund investments to PMS and AIF. So now we thought, why not we will invite someone who has been into this space for over 15 long years and brings about complete expertise, not only on PMS, but overall behavior finance and value investing, So with me, I have Mr. Anshul Sehgal. He's EVP and head of PMS at Kotak Mahindra Asset Management Company. So Anshul, first of all, thank you so much for accepting our request and taking the time out.
It is my pleasure. Thank you, Vikas. Thank you for inviting me.
Thank you. So, let me have the privilege of introducing Anshul first, and then we'll talk about, the topic that is given to us. Anshul, basically, he brings about more than 21 years of experience, out of which he spent 1.5 decades with Kotak, single organization. And he's been instrumental in terms of not only defining the investment philosophy of the organization, also being able to scale up the entire alternate space for Kotak. So, out of these 21 years, he also had a chance to work with large organizations like JP Morgan on the research side. Research, more of the equity research basically. And he's had a brief stint with ICICI Bank and Standard Chartered Long Bank. So, his MBA in finance from MDI, Gurgaon, and also he's done his graduation, engineering from SIT Tumkur. So he brings about, as I said, 21 years of experience, and he's very passionate about behavior finance and value investing. And a couple of sessions that he's talked about, I follow him on various, media channel. Listening to him is always a treat. His thought process is absolutely unique. So thank you so much, Anshul, once again, and we'll start this conversation if you're okay with that.
Absolutely. Thank you very much for that introduction, Vikas. Kind of you. Thank you.
Thank you. So Anshul, we'll come to the topic, but a lot of investors have requested me that if you can share your views on the markets before we get on to the product. I don't know if you're okay sharing that, your views, or you want to just run the presentation and then talk about that.
No problem. If you like, that is a pressing question in everyone's minds. I'll give my perspective on it.
Sure.
Very happy to do that.
Yeah. So markets have reached at, all-time high. So sabhi ka ek question hai ki aapko market kya lagta hai. To aapko kya lagta hai, Anshul ji?
मार्केट्स का क्या है कि 3 महीने पहले भी महंगा लगता था, तो लोग कहते थे कि अभी मार्केट से बाहर रहते हैं, थोड़ा सस्ता होगा तो पैसा डालेंगे, 3 महीने में क्या हो गया हमें पता है, तो अभी भी महंगा लगता है। इशू ये है कि आपको मार्केट के अंदर रिटर्न्स बनाने के लिए एक कॉस्ट देना पड़ता है, वो कॉस्ट है कि आपको वॉलेटिलिटी बेयर करना पड़ता है, और अनसर्टेनिटी वॉलेटिलिटी बेयर करेंगे तो पैसा बनेगा। अब जो पिछले 3 महीने का रिटर्न बन गया है वो वापस आने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो वापस आ जाएगा। ऑफ कोर्स मार्केट में कभी जाके करेक्शन होगा, अब आप उस वेट करते रहेंगे तो फिर इश्यू है। नाउ द थिंग इज दैट व्हेन द करेक्शन हैपेंस यू हैव टू हैव द हार्ट टू इन्वेस्ट देन, बट then you will be thinking that maybe the markets will correct more, and so let us stay on the sidelines. What this does is that it keeps you bereft of returns, that jab market chalta hai to aap market mein nahi hai kyunki aap wait kar rahe hain correction ki, और जब करेक्शन होता है तो आप वेट करते हैं कि और करेक्शन होगा तो हम आएंगे। ऐसे पैसा नहीं बनता है। पैसा तभी बनता है जब आप मार्केट के अंदर वॉलिटिलिटी बेयर करें, क्योंकि वो कॉस्ट है एक तरह से कि आपको रिटर्न आए, उसके लिए वो कॉस्ट है वॉलिटिलिटी बेयर करना। इसलिए स्टेइंग इन द मार्केट्स इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एक्चुअली आइडेंटिफाइंग द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन द मार्केट। विद दिस सॉर्ट ऑफ बैकग्राउंड आई शुड से दैट व्हाइल मार्केट्स हैव रैलीड क्वाइट मीनिंगफुली जस्ट नाउ एंड इफ योर टाइम होराइजन इज 3-6 months देन आई डोंट हैव एन आंसर कि 3-6 महीने में क्या होगा मार्केट्स में, आई डोंट हैव एन आंसर। बट आप अगर मुझसे पूछेंगे 3-6 साल में क्या होगा, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आई एम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन वॉट वेयर इंडिया स्टैंड्स एंड आई एम बुलिश फ्रॉम टू परस्पेक्टिव्स। वन इज फंड्स फ्लो, द सेकेंड इज द अर्निंग्स ट्रेजेक्ट्री दैट इंडिया विल सी। वॉट आई मीन बाय दैट इज फंड फ्लोज अगर देखें तो इंडिया का वेट MSCI इमर्जिंग मार्केट में कुछ 13-14% का है, वही वेट चाइना का कुछ 34-33-34% ऐसा कुछ है। और उसके अलावा बाकी इमर्जिंग मार्केट्स हैं, ताइवान हो गया, अभी भी साउथ कोरिया उस इंडेक्स में है जिसका कुछ 10-11% का वेट है, और बाकी और इमर्जिंग मार्केट्स हैं। अगर आप गोरे का माइंडसेट देखेंगे तो वो पैसा डालेगा कहाँ? चाइना में तो अभी यूएस और चाइना में आई मीन जियोपॉलिटिकली बहुत टेंशन है, तो यूएस इज डिस्करेजिंग पीपल फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन चाइना। ताइवान कब चाइना पैर रख देगा ताइवान में पता नहीं। अगेन दैट इज नॉट वन मार्केट वेयर पीपल विल गो इन विद इमेंस गस्टो। ब्राजील इज अ सिक्लिकल मार्केट, उधर कमोडिटीज ज्यादा है। अगर तो आप कमोडिटी सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ब्राजील ठीक है, नहीं तो ब्राजील में भी पैसा डालना उतनी क्वांटिटी में पॉसिबल नहीं है। रशिया आउट ऑफ द गेम, साउथ अफ्रीका स्मॉल मार्केट, रह क्या गया इंडिया। और इस वजह से अगले 3-5 साल में इंडिया में सुनामी ऑफ फ्लोज मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, इनफ्लोज। एंड अभी तो हम वी आर ओनली स्क्रेपिंग द सर्फेस। आई थिंक FIIs का टोटल इन्वेस्टमेंट इंडिया में कुछ $600 बिलियन का है। वो $600 बिलियन क्यों नहीं 1.5 ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन हो सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और वैसा होगा तो आप समझ सकते हैं कि इस मार्केट में क्या होगा। फ्लोज वाइज आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन इंडिया। सेकंड, ग्रोथ। कौन सी ऐसी मार्केट है दुनिया में जो 6% मेजर मार्केट 6% GDP के ऊपर ग्रो कर रही है? कोई मार्केट नहीं। और इंडिया एक ऐसी मार्केट है जिसने पिछले साल में 7% के ऊपर ग्रो किया है, और इस साल एक्सपेक्टेशन है 6.5% का ग्रोथ का। और अगर निफ्टी EPS ग्रोथ देख लें, मतलब GDP से निफ्टी EPS में जो अर्निंग्स ट्रांसलेट होती है वो देख लें, तो पिछले साल में हमने कुछ 10% का अर्निंग्स ग्रोथ किया है, और एक्सपेक्टेशन है इस साल में कुछ 18% का अर्निंग्स ग्रोथ का, और नेक्स्ट ईयर में कुछ 13-14% का। तो मतलब अगले 2 साल में 15-16% का अर्निंग्स ग्रोथ का मार्केट का एक्सपेक्टेशन है। अब ये एक्सपेक्टेशन आप दुनिया में कहीं नहीं देख सकते असाइड फ्रॉम मे बी US, क्योंकि US के अंदर दुनिया का ग्रोथ US में आता है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, इस वजह से US एक अलग मार्केट है, बट मेजर मार्केट्स में इतना ग्रोथ आप कहीं नहीं देख। और इस वजह से इंडिया विल बी एन अट्रैक्टिव मार्केट फॉर ग्लोबल इन्वेस्टर्स। एंड अगर हम छोटे स्टॉक्स की बात करें, स्मॉल एंड मिड कैप्स की बात करें, तो कई स्मॉल एंड मिड कैप्स ऐसे हैं जो कि सेक्टर लीडर्स हैं, लेकिन फिर भी स्मॉल एंड मिड कैप्स हैं क्योंकि उनके सेक्टर ही छोटे हैं। अब आप अगर इंडिया में पर कैपिटा इनकम देखेंगे तो $2,200 की पर कैपिटा इनकम है, वो कंपेयर करती है चाइना की $11,000 से और अमेरिका की $63,000 से। नाउ जब पर कैपिटा इनकम इतनी छोटी होगी तो इंडस्ट्रीज तो जो सेक्टर्स होंगे वो तो छोटे होंगे ही होंगे, और इस वजह से कई कंपनीज उनकी उन सेक्टर्स में डिस्पाइट बीइंग लीडर्स वो स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज रह जाती है। लेकिन जब ये 2200 डॉलर पर कैपिटल इनकम 3500 डॉलर हो जाएगा अगले 3 से 5 साल में, तो आप ये मान के चलिए कि जो हमारी कंजम्पशन ग्रोथ है वो अनप्रिसिडेंटेड होगी, और इस वजह से ये सेक्टर ही जो आज छोटे हैं वो एक्सपैंड कर जाएंगे मीनिंगफुल। वो एक्सपैंड करेंगे तो जो लीडिंग कंपनीज हैं वो तो और बड़ी होंगी ही होंगी, और इस वजह से स्मॉल मिड कैप, स्मॉल से मिड कैप बनेंगी कंपनीज, मिड कैप से लार्ज कैप बनेंगी। और ये जो ट्रेंड है ये चल चुका है। इसमें मतलब आप ये ज़रूर हो सकता है कि स्पीड ब्रेकर्स आ जाएं, बट ये पक्का है कि ये स्पीड चलती रहे और कंपनीज आगे चल के अच्छा करती ही रहे। तो आप लकी हैं कि आप इंडिया में हैं इस टाइम में, जबकि इंडिया का इतना ग्रोथ हो रहा है। मैं हम सब के लिए कह रहा हूँ, ना सिर्फ हम दोनों बट हमारे जितने व्यूअर्स हैं वो भी। और हम लकी हैं कि हमारे पास ये एक तरह से इस इंडस्ट्री की थोड़ी समझ है कि क्या हो क्या रहा है। कई लोगों को इस चीज़ की समझ ही नहीं होती कि ब्रॉडर इकोनॉमी में क्या हो रहा है। ये दोनों चीज़ें पता होना एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, और इस एडवांटेज का फ़ायदा तभी लिया जा सकता है जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करें, बजाय इसके कि 3-6 महीने के लिए इन्वेस्ट करें, 3 साल 5 साल 10 साल के लिए इन्वेस्ट करिए। और इंडिया में अगर आपका माइंडसेट और आपकी आपका टाइम होराइजन इतना है तो इट्स नियरली इम्पॉसिबल टू गो रॉन्ग इन इंडिया। यू विल डू वेरी वेल विद दैट टाइम होराइजन। सो आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन द मार्केट्स फ्रॉम द लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म देयर विल ऑलवेज बी वॉलेटिलिटी, बट एज आई सेड दैट इज द कॉस्ट यू बेयर for making long-term wealth. Sustain the markets, even though markets have rallied just now, don't stop. I mean, you may not want to put in lump sum monies, but STPs, SIPs, kuch aapka allocation equities mein hona hi chahiye. Aisa hamara manna hai. That's my view.
So thank you so much for sharing your views on the markets. Main agree karta hu, ye jo aapne baat boli ki agla jo 10 saal jo जो हम देखने वाले, शायद ही हमारे पेरेंट्स ने नहीं देखा होगा, और शायद आगे बच्चे भी ये जो ग्रोथ है विटनेस के नहीं कर पाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये कि दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन आवर इकॉनमी। तो कि आपका कहना सही है, बट इसमें अंशुल जी एक ये देखने को मिला है कि जनरली स्मॉल कैप से मिड कैप और मिड कैप से लार्ज कैप का जो वैल्यू माइग्रेशन है वो काफी सूक्ष्म रहा है, इन द सेंस दैट देयर वर वेरी वेरी फ्यू companies who could actually migrate, जैसे बजाज फाइनेंस जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल इज वन ऑफ देम। तो अब वो आपको दिख रहा है कि वो मेगा ट्रेंड अब पकड़ेगा यहाँ से, और आपको क्यों ऐसा आपने ये बोला?
हाँ बिल्कुल, मुझे दिख रहा है कि ये होने ही वाला है। और एक ईजी पॉकेट जिसके अंदर आप ये मतलब जिसके अंदर आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप अगर इंडस्ट्री लीडर्स लेंगे, एक ट्रेंड जो हमने बड़ा क्लियरली देखा है वो ये है कि आपका जब स्केल बन जाता है तो आपको कई ऑपरेटिंग बेनिफिट्स मिलते हैं। वो बेनिफिट्स ऐसे होते हैं कि आपकी कॉस्ट कम हो जाती है, आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स डीलर्स हैं वो आपसे जुड़ना चाहते हैं क्योंकि आप सबसे बड़े प्लेयर हैं, सबसे ज़्यादा ऑफरिंग्स आपकी हैं, आपका जो नेटवर्क है वो सबसे ज़्यादा हो जाता है, आपका जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो कम हो जाता है। इन सब चीजों की वजह से जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं वो तो बढ़ते ही जाएंगे, मार्केट शेयर गेन करते ही जाएंगे बाय एंड लार्ज विद अ फ्यू एक्सेप्शंस। नाउ अगर ऐसा है तो ये तो हमारे लिए एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस बड़ा सिंपल हो गया कि अगर आपने ऐसी कंपनीज में पैसा डाला जो कि सेक्टर लीडर्स हैं तो वो कंपनीज तो आगे चल के बेनिफिट करने ही वाली हैं और मार्केट शेयर गेन करने ही वाली हैं, और सेक्टर का ग्रोथ वो कैप्चर करेंगी, इस वजह से वो बड़ी कंपनीज हो जाएंगी। एक तो ये फिल्टर होगा। दूसरी चीज ये है कि कई सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि बहुत छोटे हैं आज की डेट में, लेकिन वहां पे क्योंकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का मेरे हिसाब से रेनेसांस होने वाला है अगले 5-10 साल में, तो वो सेक्टर्स जो है वो बढ़ जाएंगे क्योंकि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी, और इस वजह से वो जो सेक्टर्स छोटे होने की वजह से कंपनीज छोटी हैं, वो सेक्टर्स बढ़ेंगे जब तो कंपनीज भी बढ़ेंगे अपने साइज में, और वो जो उनकी बढ़त है, जो एक्सपेंशन है, वो यही ट्रांजिशन लाएंगी कि स्मॉल कैप मिड कैप हो जाएंगे, मिड कैप लार्ज कैप हो जाएंगे। ये ट्रेंड तो वेरी विजिबल है बहुत. मतलब अब मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, आप देखिए इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ी लगेज कंपनी है, एक 1.4 बिलियन डॉलर की हमारी पॉपुलेशन, 1.4 बिलियन पीपल की पॉपुलेशन है, जो सबसे बड़ी कंपनी है वो सिर्फ 2,000 करोड़ का उसका मार्केट रेवेन्यू, सिर्फ 2,000 करोड़. अब आप यही अगर समझ लें कि इतने 1.4 बिलियन पीपल जब वो ट्रैवल करने लगेंगे, और अगर हम ये भी मान के चलते हैं कि वो मतलब एक एक बैग से 1,000 रुपये का भी है, और उस हिसाब से भी मान के चलते हैं ये मार्केट 50,000 करोड़ की हो सकती है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 50,000 करोड़ में लार्जेस्ट प्लेयर आप समझ सकते हैं कितना बड़ा हो सकता है आज, जो कि सिर्फ 2,000 करोड़ का है. तो इस तरह की बहुत इंडस्ट्रीज और अपॉर्चुनिटीज इस मार्केट में आएंगी.
जी
एक बस चीज ये है कि हमें उनको पकड़ के और बैठ जाना है, हिलना नहीं.
बहुत अच्छा एग्जांपल दे। दूसरा एग्जांपल आप शायद चप्पल जूतों में भी अगर देखते हैं तो इवन मतलब सबसे बड़ी कंपनी भी शायद आज स्मॉल कैप है इंडिया के अंदर, जो इंडिया की सबसे
बिल्कुल
बड़ी कंपनी। तो इस तरह के एग्जांपल्स है कि अभी तो मतलब पार्टी शुरू हुई है, ये बोलना चाहिए कि
करेक्ट
इसमें बहुत बहुत काम होना बाकी है, बहुत काम होना बाकी है। और आपने जैसा बोला कि जैसे ही ये इनकम 2,200 से 3,500 पहुंचता है, आपका डिस्क्रिशनरी स्पेंड 5-6 टाइम्स हो जाता है, उसके अपोजिट चलता है।
एब्सोल्युटली
तो मतलब एक तीर इधर से मारा है ग्रोथ का, तो वहां से 5-6 तीर आएंगे डिस्क्रिशनरी स्पेंड के, वो आई थिंक दैट विल बी अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। और ये ऑलरेडी इंडिया विटनेस कर रहा है। आप कहीं भी चले जाइए, कोई भी शहर में चले जाइए, आप देखिए आपका जो पहले का जो था तरीका देखने का शहर को, और आज का जो कम्प्लीटली चेंज हो गया है। मेरे कल मेरे एक इन्वेस्टर से मिला, वो बोल रहे थे वो अल्जीरिया में, तो वो पेट्रोकेमिकल का इंडस्ट्री में, तो उन्होंने बताया कि उनको मोबाइल मिला कंपनी से, तो मेड इन इंडिया था। पहले मिलते थे मोबाइल तो मेड इन चाइना मिलते थे, पहली बार उनको जो फोन मिला कंपनी की तरफ से वो मेड इन इंडिया वाला। तो ही फेल्ट वेरी प्राउड एंड ही सेड कि मेरे जो बाकी के एक्सपर्ट जो कॉलिग्स हैं उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया कि आप इंडिया से सामान आने लगा, वेरी प्राउड मोमेंट।
करेक्ट करेक्ट.
सो
और
या प्लीज अंशिल जी जी
बिल्कुल आप ठीक कह रहे.
तो नाउ विद दैट विल नॉट वेस्ट टाइम, एंड देयर आर अदर पीपल हु हैव जॉइंड इन नाउ, सो विल कम टू द टॉपिक। सो वी पिक्ड अप दिस टॉपिक कॉल्ड यू नो लर्निंग फ्रॉम स्पोर्ट्स इन इक्विटी इन्वेस्टिंग। सो वी ट्राइंग टू यूटिलाइज दिस कोरिलेशन, एंड समहाउ वी फेल्ट दैट वुड बी द बेटर वन देन यू टू रियली रीच आउट टू एंड स्पीक टू यू एंड ट्राई एंड रीड योर माइंड। What do you think about that? So, if you have prepared some slides, so maybe you can run this through.
जरूर.
Yeah, your slides are visible.
विजिबल राइट. सो
Yes.
द प्रेजेंटेशन इज अबाउट व्हाट इक्विटी इन्वेस्टर्स कैन लर्न फ्रॉम प्रोफेशनल स्पोर्ट्स, एंड दिस विल डेल्व इनटू द माइंडसेट ऑफ इन्वेस्टिंग एंड स्पोर्ट्स, एज आल्सो हाउ टू इवेंचुअली मेक मनी इन इन इक्विटी इन्वेस्टिंग बाय लर्निंग फ्रॉम स्पोर्ट्स. दैट इज द इंटेंशन ऑफ दिस प्रेजेंटेशन. लेट्स लुक एट परसिस्टेंस इन स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्स में परसिस्टेंस का क्या सिग्निफिकेंस है? देर इज अ फेमस इंडियन क्रिकेटर हु स्टार्टेड हिज वनडे इंटरनेशनल करियर विद अ डक अगेंस्ट पाकिस्तान, फॉलोड बाय अनदर डक विद न्यूजीलैंड, स्कोर्ड फर्स्ट हाफ सेंचुरी आफ्टर 8 इनिंग्स, स्कोर्ड फर्स्ट सेंचुरी आफ्टर 79 ओडीआई मैचेस, स्टार्टेड हिज करियर इन 1989 एंड गॉट फर्स्ट सेंचुरी इन 1994. विकास आप गैस लेना चाहेंगे ये कौन है क्रिकेटर?
तो वही सोच रहा था जब आपने प्रेजेंटेशन लगाया, कपिल देव,
सचिन तेंदुलकर.
सचिन तेंदुलकर।
सचिन तेंदुलकर. अभी अगर इसके बाद बोर्ड ने सचिन तेंदुलकर के साथ परसिस्ट नहीं किया होता और सचिन तेंदुलकर को अपने पे कॉन्फिडेंस ना होता, तो इंडिया वुड हैव लॉस्ट आउट ऑन सचिन 100+ टेस्ट ओडीआईज, टेस्ट एंड ओडीआई सेंचुरीज, And you know, such a great player would have not played for India because they did not persist with it. This is what persistence you know leads to in sports. And let's correlate this with the markets. आप ये देखिए, ये दो companies हैं, एक Asian Paints है, एक APL Apollo Tubes है. APL Apollo Tubes, of course, 2017 में it was a small cap name. Asian Paints was a very well known name. और अब आप अगर इनका earnings growth देखेंगे, EPS growth 2017 और 20 का, तो APL Apollo Tubes का earnings growth strong था Asian Paints से और ROE भी अच्छा था. लेकिन stock price अगर देखेंगे October 2017 से February 2020 में, तो Asian Paints went up some 56%, while APL Apollo Tubes was up about 8%, मतलब flat था 3 साल में. और मैंने जान के ये period COVID से पहले का period लिया है, क्योंकि COVID में तो ये आधा हो गया. तो आप अगर मार्च का period ले लेंगे, तो October 17 से मार्च में ये stock कुछ 40 से 50% नीचे था. Despite showing such strong growth. अब आगे देखते हैं, आगे अगर देखें तो Asian Paints अगले 2 साल में 2020 से 22 में कुछ 6.7% ग्रो किया, APL Apollo Tubes 57% ग्रो किया. और उसका नतीजा ये हुआ कि स्टॉक ने ये किया, मतलब इस सारे परफॉर्मेंस को का रिटर्न जो है वो बैक एंडेड आया. ये 6.5 times stock chala from October 2017. While Asian Paints also did very well, it went up 2.5 times in 5 years. But the outperformance of APL Apollo Tubes was quite stark, and that was on account of the strength of its business and growth that the company did so well. Now, had you lost persistence in this name after 3 years and exited, you would have missed out on such stupendous returns in this name just because the returns were back-ended. So persisting with stocks, if they are doing well, of course, you've got to figure out whether the business is doing well or not. If the business is doing well, then persistence with stocks is the right strategy, because in markets, you know, you don't have control over prices in the short term, but in the long term, markets do follow fundamentals to give returns. And it is quite evident in this particular example that sticking with an APL Apollo Tubes would have been very lucrative. And I can give you example after example where this trend did play out. So persistence in markets is actually a virtue. लोग बोर हो जाते हैं और स्टॉक्स में से निकल जाते हैं. कई लोग, आप कई लोगों से बात करेंगे तो वो कहेंगे मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, जब मैं निकलता हूं तो कंपनी चल जाती है. लेकिन वो किस्मत की प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने माइंडसेट की, अपनी साइकोलॉजी की प्रॉब्लम है. हम परसिस्ट नहीं करते, हम बोर हो जाते हैं और हम निकल जाते हैं, और उस समय निकलते हैं जब इन्फ्लेक्शन पॉइंट आने वाला हो. पीटर लिंच एक बहुत ग्रेट इन्वेस्टर हैं, उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात बोली थी. इन माय इन्वेस्टिंग करियर द बेस्ट गेन्स यूजुअली कम इन द थर्ड और द फोर्थ ईयर, नॉट द थर्ड और द फोर्थ वीक. द प्रॉब्लम इज दैट एवरीबडी वांट्स टू गेट रिच फास्ट, व्हिच इज व्हाई दे एक्सपेक्ट रिटर्न्स इन द थर्ड फोर्थ वीक, व्हाइल पर्सिस्टेंस एंड फॉर यू नो फॉर क्रिएशन ऑफ वेल्थ इज अंडर एस्टिमेटेड. इफ वी वेट फॉर द थर्ड फोर्थ ईयर, then this is what we can ideally generate in quality names. A risk return mindset, focus on asymmetrical bets. What does this mean? आप देखिए, जो first IPL championship हुई थी, उसमें राजस्थान रॉयल्स ने अपनी टीम बिल्डिंग के लिए जो प्लेयर्स की बिडिंग की थी वो सबसे कम थी, $4.1 million, जबकि सबकी कुछ $6 to $7 million की बिडिंग थी. तो इनकी बिडिंग स्टैंड आउट करती थी, सबसे कम इनकी बिडिंग थी उस टूर्नामेंट की. और हुआ क्या, राजस्थान रॉयल्स जीत गए, मतलब सबसे कम पैसा बिट करने के बाद भी राजस्थान रॉयल्स वो टूर्नामेंट जीत गए। और उनका बाद में कहना ये था कि वाइल अदर फ्रेंचाइजीज बॉट टीम्स टू बिल्ड अ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म फॉर देयर ब्रांड्स और गुड कनेक्ट विद कंज्यूमर्स, फॉर अस आईपीएल वाज अ सीरियस बिजनेस एंड वी ट्रीटेड इट लाइक वन। वी हैड अ क्लियर बिजनेस प्लान विद अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन आर इन्वेस्टमेंट्स एंड पोटेंशियल रिटर्न्स ऑन दोज इन्वेस्टमेंट्स। वी डिडंट वांट स्टार्स, वी वांटेड परफॉर्मर्स। तो उन्होंने सस्ते परफॉर्मर्स खरीदे, मतलब जो कि अभी प्राइस्ड राइट नहीं थे, और उसका फायदा ये हुआ कि टीम इवेंचुअली जीत गई। इनको एसिमेट्रिकल पे ऑफ मिला जबकि बाकी लोगों ने ओवर इन्वेस्ट किया और उनको वो पे ऑफ नहीं मिला। सिमिलरली अगर मार्केट्स में देखें तो 2000 साल 2000 में मैंने पुराना एग्जांपल जान के लिया है क्योंकि ये थोड़ा स्टार्क एग्जांपल है। 2000 में टेक्नोलॉजी टेक ऑफ कर रही थी और उस समय हर कोई टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहता था। अगर आपने मार्च 2000 में इंफोसिस में इन्वेस्ट किया होता बजाय इसके कि आप टाटा स्टील में इन्वेस्ट करें, तो आपका इंफोसिस का इन्वेस्टमेंट करीब करीब 50% नीचे था अगले 3 साल। और वो ही इन्वेस्टमेंट टाटा स्टील में किया होता तो वो 4 गुना बढ़ गया था। इतना बोरिंग सेक्टर टाटा स्टील, दूसरी तरफ इतना एक्साइटिंग सेक्टर टेक्नोलॉजी, और दोनों में परफॉर्मेंस का इतना स्टार्क डिफरेंस आया। एक्चुअली एसिमेट्रिकल पे ऑफ आया टाटा स्टील में, और वो तब आया क्योंकि वैल्यूएशंस में इतना फर्क था। जहां इंफोसिस 100 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पे ट्रेड करता था, टाटा स्टील कुछ 2-3 टाइम्स पे ट्रेड करता था ऑन प्राइस टू अर्निंग्स। और इस वैल्यूएशन की वजह से टाटा स्टील में इतना सिग्निफिकेंट रिटर्न आया। एक्चुअली गुड क्वालिटी इजंट इनफ, बाइंग एट द राइट प्राइस इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। अगर आपने सही भाव नहीं दिया अच्छे अच्छी कंपनी का, तो आप अपने को इस तरह एक्सपोज करते हैं डाउनसाइड्स को। और अगर आपने अच्छा भाव दिया है तो आप इवन एवरेज कंपनीज में, सिक्लिकल कंपनीज में इतना अपसाइड ला सकते हैं। इस वजह से एसिमेट्रिकल पे ऑफ्स की तरफ फोकस करना, रिस्क रिटर्न माइंडसेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिस्क सिर्फ बिजनेस का नहीं है, रिस्क वैल्यूएशंस का भी है। नोइंग विच वैल्यूएशंस आर अवॉइडेबल बिकॉज दे आर टू स्टार्कली एक्सपेंसिव इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जस्ट लाइक फाइंडिंग द राइट बिजनेस इज इम्पॉर्टेंट। सो रिस्क रिटर्न माइंडसेट इज क्रिटिकल इन एक्विटी इन्वेस्टिंग। इंडिपेंडेंट थिंकिंग, कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग, वॉट डज दिस मीन? इन स्पोर्ट, ये 2015-16 में लेस्टर सिटी इंग्लिश प्रीमियर लीग जीत गई थी। ये पॉसिबली सबसे, दिस वॉज द ग्रेटेस्ट अंडरडॉग स्टोरी इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश प्रीमियर लीग। जब इन्होंने शुरू किया वो टूर्नामेंट, तो इनपे 1:5,000 ऑड्स थे। मतलब अगर किसी ने 1 करोड़ रुपया लगाया बिगिनिंग ऑफ दैट टूर्नामेंट, तो वो एंड ऑफ द टूर्नामेंट में अगर उसने वो पूरा बेट मेंटेन किया तो 5,000 करोड़ रुपया वो जीतता था इनकी विक्ट्री पे, इतने अंडरडॉग थे। और 1995 से, 1995, सिंस देन ओनली 4 टीम्स हैड वन द इंग्लिश प्रीमियर लीग एंड लेस्टर वाज नॉट वन ऑफ देम। नाउ डिस्पाइट दैट दे वन, व्हाट डिड दे डू? नाउ कन्वेंशनल विजडम वाज दैट यू हैव टू हैव अ हाई पोजेशन एंड पासिंग एक्यूरेसी एंड दैट्स द वे टू विन द चैंपियनशिप। इफ यू लुक एट द पोजेशन परसेंटेज ऑफ एन एवरेज चैंपियन टीम, इट वॉज 58%। इन कॉन्ट्रास्ट लेस्टर वॉज ओनली 43%। सिमिलरली इफ यू लुक एट पासिंग एक्यूरेसी ऑफ अ कन्वेंशनल विनिंग टीम, इट वॉज 80%, वाइल लेस्टर वॉज ओनली 70%। डिस्पाइट दैट दे वन, एंड क्लियरली इट वॉज बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग। वॉट डिड दे डू? they focused on counter attacks rather than conventional strategy of higher possession. They let go of possession and they focused on attacking after the others had attacked. So counter attack strategy. They played a deep defense ki log hame attack karenge to hamare paas itna defense hona chahiye ki hum goal na hone de aur uske baad jab hum unse ball lenge to hum counter attack karenge aur phir goal karenge aur iska result ye hua ki they scored the highest goals in the tournament. So they thought very differently, independently unhone think kiya aur sabse zyada goal mare us tournament pe. Eventually they won the tournament. Now how does this reflect in equities and equity investing? Agar hum ICICI bank ka stock dekhe to usme stock underperformance tha. Basically reasons ye the ki 3 saal ka NPA cycle, matlab NPAs balloon ho rahe the is bank mein 2014 se 17, aur koi stock mein invest nahi karna chahta tha is wajah se, kyunki everybody thought that NPAs are going up, we much rather stay away. Corporate governance was something that the markets were concerned about and there was a growth slowdown. Ab kisi ke ghar mein aag lagi hogi to wo bahar ja ke cricket to khelega nahi, wo pehle to apni aag bujhayega. Aur is company mein kyunki NPAs badh rahe the isliye the company was not going out and growing. They were first containing NPAs and that led to a growth slowdown. If we step back and looked at all these three issues, the reality was that all three issues were resolvable. The NPA cycle had peaked. Kuch 8 se 9% ka inka gross NPA tha aur us time pe peak ho chuka tha, matlab wahan se aur upar jane wala nahi tha, niche hi aane wala tha. मैनेजमेंट चेंज की बात होनी स्टार्ट हो गई थी और वो इनेविटेबल था कि मैनेजमेंट चेंज होगा, तो वो इशू भी रिजॉल्व हो जाता. और कैपिटल एडिक्वेसी बैंक की 19% की थी, जिसका मतलब उनके पास सफिशिएंट रूम फॉर ग्रोथ था. तो तीनों इश्यूज इनके रिजॉल्वेबल थे. और अगर हम ये देखें नीचे की जो हाईलाइटेड रेड लाइन्स है, तो आप देखेंगे 2018 में कुछ 9.5% का इनका ग्रॉस एनपीएल था, वो नीचे आना चालू हुआ तब से पीक होने के बाद, और नीचे आते आते 2022 में 3.7% ग्रॉस एनपीएल हो गया. और इस वजह से इनकी प्रोविजनिंग भी जो थी फॉर बैड लोन्स वो भी नीचे आने लगी. रिजल्ट था ये कि अगर आप आईसीआईसीआई बैंक का परफॉर्मेंस देखें फ्रॉम 2016 टू 2023, मई 2023, तो निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों से सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म किया है आईसीआईसीआई बैंक ने. और ना सिर्फ इंडाइसेस से बट इंडिविजुअल बैंक से भी इस बैंक ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है. अगर आप इंडिपेंडेंट थिंकिंग रखते, कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग रखते कि अभी इश्यूज हैं लेकिन ये सब इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे, तो आप इतना पैसा इस बैंक में बना सकते थे. लार्ज कैप नेम में आप 4 गुना पैसा बना सकते थे ओवर अ पीरियड ऑफ 6-7 years, विच इज सब्सटेंशियल, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिटर्न. जैसे जैसे बैंक का आरओई एक्सपेंड हुआ, उसका स्टॉक भी आउट परफॉर्म करना चालू किया स्टॉक में, और इतना आउट परफॉर्मेंस था. वाई आर नेगेटिव थिंकिंग, इसका क्या मतलब है? वाया नेगेटिव का मतलब है वी गेन मोर बाय सब्ट्रैक्टिंग रादर देन एडिंग. नासिम निकोलस तालेब, जिन्होंने ब्लैक स्वान किताब लिखी थी, वो ये कहते हैं. इसका मतलब ये है कि क्या नहीं करना वो जानना बहुत जरूरी है, टू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, एंड एज लॉन्ग एज यू नो व्हाट नॉट टू डू, यू आर होम. इनफैक्ट यू आर इन अ वेरी गुड सॉर्ट ऑफ कंपनी. नाउ प्रोफेशनल टेनिस इज अ विनर्स गेम. उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि 80% ऑफ द पॉइंट्स आर वन, दैट इज वन प्लेयर हिट्स द बॉल इन सच अ वे दैट द ओपोनेंट कैनॉट हिट इट बैक. प्रोफेशनल टेनिस में ऐसा होता है. बट एमेच्योर टेनिस जो है वो लूजर्स गेम है. उसका मतलब ये है कि मजॉरिटी ऑफ द पॉइंट्स आर लॉस्ट. देर आर डबल फॉल्ट्स, hit into the nets, or simply miss the ball. People simply miss the ball, which is why amateur tennis is where you make a lot of errors and hence you lose the game. इन्वेस्टिंग में परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली बाय अवॉइडिंग यूजुअल एरर्स और एपरेंट एरर्स. आप अगर निफ्टी 500 को देखें तो उसका परफॉर्मेंस 10 साल का बिटवीन अक्टूबर 09 टू फरवरी 18 इस तरह का रहा. और अगर आपने हाई लीवरेज्ड लो आरओई कंपनीज लिए होते इस पीरियड में तो आप नेगेटिव होते, 100 रुपये 50 रुपये हो गए होते. और निफ्टी 500 अगर आपने लिया होता तो वो सिर्फ वो इंडेक्स डबल हो गया था. सिर्फ अवॉइड करना हाई डेट कंपनीज और लो आरओई कंपनीज आपको इतना पीस ऑफ माइंड देता और इतना रिटर्न देता. तो अवॉइडिंग यूजुअल एरर्स इज नोइंग दैट मेरे को डेट हाईली डेट कंपनी जिसमें बहुत लोन्स है ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना. सिर्फ इतना एक सिंपल अगर आप रूल लगा लें तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा. और बाय एंड लार्ज आप वो जो एरर अवॉइड करके आप रिटर्न बेटर बना सकते हैं. तो वाया नेगेटिव अगर स्टॉक्स में सोचें कि हमें क्या नहीं करना स्टॉक्स में तो भी हम एक बहुत बड़ी एडवांटेज में आ जाते हैं. फाइनली अवॉइड लॉस अवर्जन. इसका क्या मतलब है? टेनिस में सेकेंड सर्व में players utilize a slower second serve to avoid committing a fault and losing a point. Generally, second serve होने वाली है तो लोग थोड़ा cautious हो जाते हैं, थोड़ा धीरे second serve करते हैं ताकि double fault ना हो. But as per ATP, the winning percentage of second serve on average is 10% lower than the first serve. However, the highest ranked players, players like Nadal and Federer, they have the best hit rate on the second serves. Nadal has about a 57% hit rate. Federer has a 57% hit rate. मतलब ये लोग loss averse नहीं हैं. ये second serve को उतने ही intensity से करते हैं जितना first serve को करते हैं. और इस वजह से ये इनकी जो परफॉर्मेंस है वो उतनी स्ट्रॉन्ग है जितनी बाकियों की नॉर्मल प्लेयर्स की नहीं है. सिमिलरली मार्केट्स में यू शुड नेवर वेस्ट अ गुड क्राइसिस. टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस हैव बीन द बेस्ट टाइम्स टू इन्वेस्ट. इस टाइम पे अगर आप लॉस अवर्जन ले आए तो आप अपना सबसे बड़ा नुकसान करते हैं. आप ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देख लीजिए. उससे पहले एक साल में 59% निफ्टी मिड कैप डाउन था, निफ्टी स्मॉल कैप 71% डाउन था. अगर आप इस टाइम पे लॉस अवर्स हो जाते हैं और पैसा निकाल लेते हैं मार्केट से तो अगले साल का 100% का रिटर्न इन दोनों इंडाइसेस में आप मिस कर जाते हैं. और इस वजह से आप ही का जो लॉस अवर्जन माइंडसेट है वो आपके अगेंस्ट वर्क करता है. इनफैक्ट इतना गिरने के बाद आपको लॉस अवर्स नहीं होना चाहिए, आपको जोर से मार्केट में पैसा डालना चाहिए. बट आप करते उल्टा है और उसका नतीजा ये होता है कि आप जो आपने पैसा लूज तो कर दिया लेकिन जब गेन हुआ तो उसमें आपने पार्टिसिपेट नहीं किया. और कोई भी उसके बाद का भी क्राइसिस देख लीजिए, सेम सिचुएशन है. क्राइसिस के टाइम अगर आपने आप लॉस अवर्स हो गए तो बाद अगेन आप मिस आउट कर जाते हैं. रिसेंट टाइम्स में कोविड लॉकडाउन भी देख लीजिए, तब से अभी तक सिग्निफिकेंट अपसाइड आ चुका है. उस पीरियड में ऑफकोर्स डाउनसाइड प्ले आउट हुआ था. जो मार्केट के बाहर बैठ गए उस टाइम में उन्होंने इसका बेनिफिट लिया नहीं, उसका लॉस तो ले लिया बेनिफिट लिया नहीं. इस वजह से अपना लॉस अवर्जन निकलना चाहिए. आप अपना स्टाइल चूज करिए लेकिन प्रोसेस और पेशेंस अपना माइंडसेट में लाएंगे तो आपको परफॉर्मेंस जरूर मिलेगा. ये हम स्पोर्ट्स से सीखते हैं और ये चीज मार्केट्स में भी हमने देखी है. थैंक यू. आई एम वेरी हैप्पी टू टेक क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी. आई होप दिस हैज बीन
एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन. एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन. सो मच टू लर्न एंड यू नो आई मीन काइंड ऑफ एग्जांपल्स दैट यू गिवन अ लॉट ऑफ थिंग्स टू रियली लर्न एंड इंप्लीमेंट. आई मीन व्हाट यू राइटली सेड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट यू शुड नॉट बी डूइंग और व्हाट You should not be looking at. I mean, हम लोग क्या, we make a plan that यहाँ भी invest कर दो, यहाँ भी invest कर दो, यहाँ भी invest कर दो, and then you know end up losing For example, when I was laying down the foundation of this organization at AI PMS, we thought we'll do only AI PMS. You know, we'll not do anything else. We're not into insurance. We're not into new loans, etc. So clearly not. I mean, knowing what you don't want to do is more important than knowing that what all things that you should do. What do you think about that?
Right.
So basically, you know, my experience, I mean, if you look at last a few years, I come across a lot of investors and I meet them and, you know, they keep asking me, what should I said, you first decide where do you want to invest. Once you decide, then you keep adding money there instead of having too many, you know, at times there you're like over diversified. So it's very important that you have to have right focus. Once you give mandate to the portfolio manager, you have to have at least 5 years of horizon. During that time, what you rightly said, the portfolio will go through its own difficult time. It will not be like goody-goody all the time. But then without pain, you will not gain. That's very important. So great presentation. Thank you. We'll open the forum for Q&A. So the first question which comes from Mr. Shivnare is, the shoes and sleeper market is highly unorganized in India. Sir, what's your views on organized and unorganized segment of this market?
Clearly, the unorganized segment will keep contracting. The organized segment will become bigger. It is a question of time. And wo kis pace se hoga, that time will tell. But ye to trend definitely play out hone hi wala hai. Har koi, jab uske paas paise thode se badh jate hai, income badh jati hai, wealth badh jati hai, to wo, you know, branded product hi lena chahega. Unbranded product aise hi nahi lena chahega. Quality lena chahega, quality ki taraf jayega. Is wajah se organized market is only going to expand going forward.
Right. So those of you who are typing a question in chat box, please do not type there. Type it in the Q&A box. The second question is, are you deploying money immediately or you're taking your own time if the mandate is given to you?
So we deploy money to the extent of 70-80% immediately. The remaining we deploy over a period of time, say 1 to 2 weeks. We believe that investors are doing asset allocation at their own end, and they are giving us money to deploy capital in the market so that we are outperforming the markets. Whether the markets are going down or up, our mandate is to outperform. And as a result, we are not taking a market call, not taking a cash call. We deploy that capital over the next, say, month or so, two weeks to a month.
Another question from my end, Anshul, you run many strategies under the PMS platform. Where do you see more value emerging? And if investor is giving us mandate, say a crore, how would you like to deploy in different strategies?
We think that the our multi-cap strategy is a high quality strategy. Why that is so is because we have a very healthy growth in that portfolio of our portfolio companies, somewhere in the region of 25%+. And yet that portfolio is available at 17 times price to earnings, which means that the PEG of that portfolio is about 0.65x. That number is very attractive in comparison to even the index. Index is at about 1.25x. So being quality at about 20% ROE, having very low debt on balance sheet of our companies, and yet offering a PEG ratio of 0.65, we think our portfolio, this portfolio is very nicely poised to take advantage as the growth comes through. Because then value will get unlocked in our portfolio companies.
Right. You know, at an AMC level, you also run strategies on IT and pharma. So, Anshul, my question is, do you see more, from a value investing point of view, do you see more value likely to emerge in pharma and IT? Because IT, A, it has fallen down to a large extent, and pharma is yet to pick up.
I couldn't agree with you more, Vikas. I think that in pharma, it has been nearly a 7 to 8 year mandi. And that mandi is now at the cusp of a change because we think that US demand is likely to pick up as we move ahead. And many of the hurdles that pharma companies were seeing in exports, those hurdles are going away. So pharma, I think, is a very attractive opportunity. Even in technology, like you rightly said, that is a secular growth sector. And last year, we have seen price correction in that sector. In our judgment, as a result of that, there is value which is starting to emerge even in technology and IT. So both these sectors are attractively positioned, and we are positive on both these sectors.
Right. So last couple of questions. Can you talk to us about your both the strategies, as in when you deploy money in IT, you look at large cap, mid cap. What's your strategy for these two thematic offerings?
So if we look at the median market cap for, say, the fintech portfolio, there the median market cap is about 1,70,000 crores. So it's predominantly a large cap oriented portfolio. In the pharma portfolio, the median market cap is about 50,000 crores, again, large cap, but relatively smaller cap as compared to the fintech portfolio. These, you know, the we will at the margin have some names which will be small and mid cap, but these are predominantly large cap portfolios, both of these.
So there's a saying that, you know, in pharma, particularly these large cap companies, because they are too dependent on US and it's a general market, you know, not a specialist market, they take a hit on their balance sheet because the price is controlled by US and therefore, you know, you don't make money. And it has been observed that over a period of time, some of the large cap pharma companies are not able to beat the benchmark. So you still continue to be overweight on those large cap companies in pharma.
See, what has happened is that you're right that price controls have come in. And as a result, many of these companies have seen price erosion. But the result of this is that US is seeing shortage of drugs because manufacturers say that we don't have, if we manufacture at these prices, then it is not viable for us. We don't make money. And so from many ANDAs, these manufacturers are backing out. Now, after this kind of a scenario, the US authorities, the USFDA in particular, is taking cognizance of this. And some amount of price stability has emerged. If prices remain stable going forward, then upside can be quite meaningful. If the same scenario continues, because valuations have corrected so much, downsides are limited. And on the other end of the scenario changes favorably, then upsides are material. So the risk reward in this sector is favorable.
So the question is same, the answer would have changed perhaps of late, looking at the valuations as well as the overall scenario.
Correct.
Great. And on the IT side, you continue to be, of course, some of the large companies like Infosys, etc., have fallen down to large extent. And I think it's a good time to accumulate them. So you have these large companies also in the part of the IT portfolio.
That's right. That's right. We do.
With that, we'd like to conclude the session here. Thank you, Anshul, for taking the time out. Truly appreciate for answering all the questions so patiently. Thank you. Thank you, everyone. Those who logged in and joined, truly appreciate your efforts. In case you wish to know more about how Anshul is running the strategy, you can reach out to us. And we'll help you with all the details. Thank you.
Thanks, Vikas. Bye. Bye. Bye.